मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी एक्सपोजिटरी हिंदी उर्दू पॉडकास्ट रू की बेदारी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मत्ती के अंजील उसके दूसरे बाब से देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। और आज का इनवान है यसु मसीह की पैदाइश पर मजूसियों की आमद। तो मेरे साथ मत्ती के अंजील उसका दो बाब उसकी पहली से 12वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। कलाम मुकदस में कुछ यूं लिखा है कि जब यसु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और उसके आगे घिर कर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए कि तूने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए भेजा। हम तेरा शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए भी खुदावंद जो तेरे इस काम में तेरी खिदमत करने वाले बने और हम तक तेरे बेटे यसु की पैदाइश का हकीकी वाक्या गवाहों की आंखों देखी रोदात से पेश किया। है खुदा, हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे नाम और तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले लोग ठहरें। हम बचपन से ही तीन मजूसियों की कहानी सुनते आ रहे हैं कि यसु मसीह की पैदाइश पर वो तोहफे लेकर आए। कुछ लोग तो ये बयान करते हैं कि वो तीन बादशाह थे, लेकिन मेरे अजीजो, इन मजूसियों के बारे में जो कुछ हमें बताया गया है इस सब में सच सिर्फ यही है कि वाकई वो मशरिक से आए थे, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया कि वो बादशाह थे और ना ही ये बताया गया कि वो सिर्फ तीन थे। एक नजरिया के मुताबिक ये बयान या समझा जाता है कि जैसे तसलीस यानी ट्रिनिटी के तलीम में तीन शख्सियात बाप बेटा रूल कुदस का जिक्र है, इसी तरह बाइबल के रिकॉर्ड में बताए गए मजूसियों के तीन तोहफों की बुनियाद पर यह नजरिया कायम किया जाता है कि इनकी तादाद सिर्फ तीन अशखास पर ही मुश्तमिल थी। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जहां खुदा का कलाम किसी चीज या वाकया या शख्सियात के बारे में खामोश हो या मुख्तसर मालूमात दे तो हमें यह इजाजत नहीं कि इसके कलाम में कुछ इजाफा करें या इसमें से कुछ निकालें। हम अपनी राय जरूर रख सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी पैसेज के बारे में कलाम के, लेकिन पूरी यकीन दहानी के साथ अपनी राय को इस तरह पेश नहीं कर सकते जैसे कि वो खुदा का कलाम हो। अब जो लोग यसु को देखने आए थे इनके बारे में मुकद्दस मत्ती रसूल ने मजूसियों का नाम देते हुए इन्हें कहा, और ये जो मजूसी का लफ्ज़ है ये कोई किसी शख्सियत का नाम नहीं बल्कि ये लकब है जो मत्ती रसूल ने इन अशखास को जो यसु को देखने आए थे उनको दिया। और ये कोई ऐसा लकम नहीं जो बादशाहों को दिया जाए, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि वो तीन बादशाह थे, बल्कि ये ऐसा लकब है जो खास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनका ताल्लुक इल्मे फलकियात यानी सितारों के इल्म से होता। और ये उस जमाना में बहुत आम था कि लोग, हत्ता के बादशाह भी ऐसे मजूसियों से अपने सितारों की मदद से मुस्तकबिल जानने की कोशिश करते थे। इसीलिए इन लोगों को मजूसी कहा गया क्योंकि इनका ताल्लुक जादूगरी और इल्मे फलकियात से था। ये कोई काले जादू करने वाले इंसान नहीं थे, जैसा कि जादूगरी का नाम जो है वो काले जादू से अटैच किया जाता है, बल्कि ये माना जाता है कि इनका ज्यादातर काम सितारों का इल्म यानी इल्मे फलकियात रखते हुए बादशाहों की रहनुमाई करना था। आगे कलाम में बताया गया है कि ये यस्सु की पैदाइश के बाद यहूदिया के बैतुलहम में उन दिनों में आए जब हेरोदीस वहां का बादशाह था। अब यहूदी तारीख हमें ये बताती है कि हेरोदीस 4 कबल मसीह में मर गया, और तारीख के माहरीन का ये कहना है कि यस्सु मसीह की पैदाइश 6 या 7 कबल मसीह में हुई। लेकिन हमारी ये राय है कि मजूसियों ने यस्सु को उसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद विजिट किया था, और जो क्रिसमस की तस्वीर हमें दिखाई जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि मजूसी और चरवाहे यस्सु को एक साथ देखने आए, जबकि बाइबल हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताती। बाइबल हमें ये बताती है कि जब मजूसी यस्सु को देखने आए तो यस्सु मरियम और यूसुफ के साथ उनके घर में था, ना कि चरनी में। और बिब्लिकल तारीख के माहरीन का मानना है कि मजूसियों का सफर मशरिक से आने में तकरीबन एक नहीं बल्कि कम अज कम 2 साल का जरूर था। और इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब हेरोदीस ने यह कानून नाफिज किया कि 2 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए, तो इससे ये जाहिर होता है कि मजूसियों को यस्सु को देखने आने में कम अज कम 2 साल जरूर लगे होंगे। खैर, जो भी है, ये मजूसी यस्सु को देखने के लिए पहले यरूशलम में दाखिल होते हैं, ना कि बैतुलहम में डायरेक्ट। और जब ये यरूशलम में दाखिल हुए तो इनका ये सवाल था कि यहूदियों का बादशाह कहाँ है जिसका सितारा हमने मशरिक में देखा है और हम उसे सजदा करने आए हैं। हम जानते हैं कि एक सितारे ने इनकी रहनुमाई की जिसकी मदद से वो यस्सु को देखने की तलाश करते हुए यरूशलम तक पहुंच गए। और कुछ उलमा का कहना है कि ये सितारा कोई ऐसी आसमानी मखलूक थी जिसकी दुम रोशन थी और मजूसियों को राह दिखा रही थी। दूसरी तरफ 16वीं सदी के एक अजीम साइंसदान केपलर जोहानस का कहना था कि 7वीं ईस्वी में 2 सियारों का एक गैर मामूली मिलाप देखा गया जिसके नतीजे में रोशनी इंतहाई चमकदार पैदा हुई और ये दोनों सियारे एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे थे। और बास का कहना है कि ये कोई खास इल्हामी मखलूक थी जो खुदा ने खास तौर पर इस वाक्या के लिए बनाई थी ताकि मजूसियों को रहनुमाई फराहम करे। यही मखलूक उन्हें पहले यरूशलम और फिर यहूदिया के बैतुलहम में यस्सु को देखने के लिए ले गई। खैर, हम जो भी नजरिया अपनाएं, एक बात तो सच है कि जिस तरह खुदा की शकायना जलाल बियाबान में बादलों के जरिए अपने लोगों को यानी इसराइलियों को रास्ता दिखा रहा था, यहां भी खुदा का काम वाजिया तौर पर नजर आता है कि वो मजूसियों को रहनुमाई फ्राहम कर रहा था ताकि जिस जगह पर यस्सु मौजूद है वो वहां तक पहुंचे। हमें सिर्फ यही बताया गया है कि मजूसियों ने मशरिक में यस्सु का सितारा देखा और उसे तलाश करते हुए यरूशलम तक पहुंच गए ताकि उसे सजदा करें। अब जब हेरोदीस ने ये सब जाना तो वो सख्त परेशान हो गया, और बाइबल बताती है कि पूरा यरूशलम हेरोदीस के साथ परेशान हो गया था। अब हमें हेरोदीस के परेशान होने की वजह तो समझ में आती है क्योंकि उसे अपनी बादशाहत का खतरा महसूस होने लगा कि एक नया बादशाह पैदा हो गया है। लेकिन यहाँ इसराइलियों के परेशान होने की वजह कुछ समझ में नहीं आती। अगरचे इसराइलियों को तो खुश होना चाहिए था कि जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोई की, बलाखर वो बादशाह पैदा हो गया, वो मसीहा जिसके बारे में नबियों ने बारहा पेशन गोई की, बलाखर वो मसीहा उनके दरमियान आ मौजूद हुआ। आखिर इसराइली यरूशलम के वो परेशान क्यों हो गए थे? जो चीज़ हमें बाइबल की तारीख में बताई जाती है वो ये है कि जब ये मजूसी आए, हम नहीं जानते कि वो वाकई तीन थे या 30 या 300, तो अपने साथ बहुत सारे कीमती तोहफे लेकर आए। और मैं ये समझता हूँ कि जब मकामी लोगों ने उन्हें देखा होगा तो उन्होंने ज़रूर आपस में ये सवालात किए होंगे कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं और क्या करने आए हैं यहाँ पर। मत्ती रसूल हमें बताता है कि वो क्या ढूंढने आए थे। वो यीशु मसीह को, जो यहूदियों का मसीहा और यहूदियों का बादशाह है, उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसे ये सब तोहफे जो वो मशरिक से लाए थे पेश करें और उसे सजदा करें। चनाचा पुराने अहदनामे के मुताबिक मसीह की पैदाइश बैतुलहम में होनी चाहिए थी, जो यरूशलम से 6 या 7 मील दूर है। और फरीसियों ने हेरोदीस को यही बताया कि मैका नबी की मार्फत पाक कलाम में यूं पेशन गोई की गई है कि ए बैतुलहम, यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। यहां हमें ऐसी नबूवत मिलती है जिसका बराए रास्त ताल्लुक बादशाह से जोड़ा जाता है, जो दाऊद की नस्ल से होगा और एक चरवाहा और बादशाह बनकर आएगा, जैसा कि पुराने दिनामे में नबियों के जरिए सिखाया गया है। चनाचा यस्सु सिर्फ बादशाह बनकर अपने लोगों में नहीं आया, बल्कि वो चरवाहा बनकर भी आया जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। और फिर हेरोदीस ने चुपके से मजूसियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुमने वो सितारा किस वक्त देखा, और उनसे ये कहा कि बैतलहम जाओ और जब उस बच्चे को जिसको ढूंढने के लिए तुम निकले हो पाओ तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी उसको सजदा करूं। अब मेरे अजीजो, एक बात यहाँ पर जो गौर करने वाली है वो ये है कि इंसान जो खुदा से दूर है अपने लालच और हर्ष को पूरा करने के लिए सही और गलत में फैसला करना बिल्कुल भूल जाता है। हेरोदीस ने बिल्कुल ऐसा ही किया जब इसने मजूसियों से कहा कि ये नहीं कि बैतुलहम जाओ और जब तुम्हें बच्चा मिले तो मुझे बताना ताकि मैं भी उसको सजदा करूँ, बल्कि वो इसके उल्ट करना चाहता था ताकि वो जब मजूसियों से जाने कि बच्चा कहाँ है तो उसको मारे, उस बच्चे को कत्ल करे, उस बच्चे को ख़त्म करे, क्योंकि उसे अपने तख्त और अपनी सल्तनत और अपने इख्तियार का डर पहुंच गया था कि एक नया बादशाह पैदा हुआ है और ये नया बादशाह उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। चनाचा मजूसियों ने अपना सफ़र बैतुलहम को जारी रखा और जब यूसुफ और मरियम के घर यस्सु को देखा तो उसे सजदा किया और हेरोदीस के पास ना जाने की खुदाई रहनुमाई पाई। मजूसियों का ये मशरिक से एक तवील सफ़र था और माना जाता है कि वो कदीम फारस यानी पर्शिया से आए थे, जिसे आज का ईरान या इराक कहा जाता है। उन्होंने एक मुश्किल और तवील सफ़र तय किया और जब यस्सु को देखा तो इसको सजदा किया। मैं जब भी इस वाक्या को पढ़ता हूँ या इस वाक्या के बारे में किसी से कलाम सुनता हूँ तो एक सवाल जहन में जो आता है वो ये है कि उस वक्त मरियम और यूसुफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उन्होंने इस सारे मामले को देखा होगा कि मजूसियों का एक ग्रोह इतनी दूर से इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके आया और इतने कीमती तोहफे यस्सु के आगे रखे, उनके कदमों में पेश किए। वो यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या है और इस सब का क्या मतलब है। जैसा कि मजूसियों ने जब अपने तोहफे खोले तो यस्सु को ये तोहफे दिए और इन तोहफों में सोना, लुबान और मुर था। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बयान किया, चनाचा फिर बयान करता हूँ कि ये तीन तोहफे जो पेश किए गए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये तोहफे तीन थे इसलिए ये तीन ही शख्सियात थी जो मशरिक से यीशु मसीह को देखने के लिए आई, जिन्हें हम मजूसी कहते हैं। हो सकता है और शायद ये तीन मजूसी ही हो या 3 के 30 हो या 300 हो जैसे मैंने कहा, लेकिन हमें वाजिया तौर पर इनके नंबर्स का नहीं पता कि ये कितने थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बयान नहीं किया गया कि वो 3 थे या 30 थे या 300 थे। चनाचा इनकी तादाद से ज्यादा इनके आने का मकसद जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो तोहफे मजूसियों ने यस्सु को दिए उनका मतलब क्या था। पहला तोहफा जो पेश किया गया उसमें सोना था। कदीम दौर में यह समझा जाता था कि सोना एक ऐसा वाह तोहफा है जो एक बादशाह के मेयार के मुताबिक उसे दिया जा सकता है, क्योंकि सोना बादशाहत की अलामत है। दूसरी तरफ दूसरा तोहफा जो यीशु मसीह को पेश किया गया वो लुबान था, और इस तोहफे का हकीकी मतलब जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज जो नुमाया है वो ये है कि यहूदी काहिन खुदा की इबादत के लिए टबरनेकल या कुर्बान गाह पर यही लुबान का इस्तेमाल करते थे, और ये खुदा के लोगों की दुआओं और खुशबू की अलामत है, ये जो तोहफा लुबान है। और बिब्लिकल स्कॉलर्स का कहना है कि ये तोहफा बादशाहों से नहीं बल्कि कहानत से वाबस्ता है, जो ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि एक काहिन के तौर पर भी अपने लोगों में जाहिर हुए। इसीलिए मत्ती की अंजील में हम यीशु मसीह को ना सिर्फ एक बादशाह के तौर पर देखते हैं बल्कि एक अजीम काहिन के तौर पर भी कलाम करते हुए देखते हैं। इसके बाद तीसरा तोहफा जो यीशु मसीह के सामने पेश किया जाता है वो इन दोनों तोहफों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो तोहफा है मुर। मेरे अजीजों, कदीम लोगों में मुर का सबसे अहम इस्तेमाल मुर्दों को दफन करने के वक्त इनके जिस्म को मसा करना था। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह कब्र में थे तो सुबह सवेरे औरतें आईं और इनके पास बहुत सारे खुशबूदार मसाले थे जिनसे वो यीशु के जिस्म को मसा करना चाहती थी, और बेशक बाकी तमाम खुशबूदार मसालों के साथ साथ इन औरतों के पास मुर भी था। चनाचा यीशु के पास बादशाहत, कहानत और मौत का यानी अपने लोगों के लिए कुर्बानी का तोहफा था जो मजूसियों ने उसे दिया। अब हमारे लिए ये बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं कि जब शमाउन ने यीशु को हैकल में देखा और कहा कि ये बच्चा यरूशलम में बहुतों के गिरने और उठने की वजह बनेगा, और मैं समझता हूं कि इस बात से मरियम को और भी ज्यादा अंदाजा हो गया होगा कि इसके बेटे को किन मुश्किलात से गुजरते हुए मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये मौत किसी आम इंसान की मौत नहीं होगी बल्कि एक पाक इंसान की मौत होगी जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, और ये मौत कोई जबरदस्ती इस पर नहीं आएगी जैसा कि गुनाहगारों पर आती है, बल्कि इसके पास अपनी जान देने और लेने दोनों का इख्तियार है। वो अपने लोगों के गुनाहों की खातिर अपनी जान रजाकाराना तौर पर देगा ताकि इसके लोग निजात पाएं और वो इनका खुदा हो और वो उसके लोग हों, जैसा कि उसके नाम इमैनुएल से जाहिर होता है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। आमीन।